हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अनय और मनस्वी दोनों ही फिलहाल इस वक्त के लिए अपनी पास्ट में की गई गलतियां कुछ देर के लिए भूलकर अपनी आज में जीना चाहते हैं, और स्पेशली मनस्वी, उसे इस बात का बहुत ही ज्यादा गिल्ट है जो कुछ भी उसने अनय के साथ किया। अपने ईगो में आकर हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव किया और उसे बुरा फील कराया। ये सब सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपना चेहरा थोड़ा सा पीछे करके नजर उठाकर अनय की तरफ देखते हुए कहा, तुम तो शायद एक दिन मुझे माफ कर भी दोगे, क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो अनय, लेकिन मैं पता नहीं कभी खुद को माफ कर भी पाऊंगी या फिर नहीं। इतना बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर बहने लगे। उसे इस तरह इमोशनल देखकर अनय उसे छोड़कर अपनी जगह से पीछे हट गया और फिर उसकी तरफ देखते हुए एकदम हैरान होने की एक्टिंग करते हुए बोला, कौन हो तुम? सच बताओ, तुम मेरी तेज तरार वाइफ मनस्वी तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो रुलाना जानती है। इस तरह बात बात पर खुद तो कभी भी नहीं रोती, इसलिए बताओ कौन हो तुम और क्यों मेरी वाइफ की जगह यहाँ पर आ गई हो उसका भेस बदलकर। उसकी ये बात सुनकर मनस्वी पहले तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गई, लेकिन फिर उसे समझ आ गया तो उसने हल्का सा स्माइल करते हुए उसके हाथ पर हल्के से मारा और मुंह बनाते हुए बोली, क्या अनय, कुछ भी बोलते हो, ये कोई वक्त है ऐसा मजाक करने का? अनय ने फिर से उसी तरह अपनी एक्टिंग जारी रखते हुए कहा, अरे मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मुझे तो पूरा शक है, सच बताओ कौन हो तुम? मनस्वी ने भी एकदम सीरियस फेस बनाकर पूछा, सच बताऊं? पक्का बता दूं? अनय ने जवाब में उसकी तरफ देखकर अपना चेहरा थोड़ा सा आगे किया और हाँ में सिर हिलाया। उसे इस तरह देखकर मनस्वी ने हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन फिर अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए वो आगे आई और अपना चेहरा उसके कान के करीब ले जाकर बोली, सो आई एम मिसेज मनस्वी सिंह, वाइफ ऑफ मिस्टर अनय सिंह। उसकी बात पर हैरान होते हुए उन्होंने तुरंत झटके से अपना चेहरा उसकी तरफ करते हुए पूछा, व्हाट, व्हाट यू जस्ट से? अपने इस सवाल के बदले में उसे कोई भी जवाब नहीं मिला और मनस्वी प्राउडली मुस्कुराती हुई उसकी तरफ ही देख रही है, और उसे इस तरह देखकर अनय ने आगे आकर उसके गाल पर किस कर लिया। तो मनस्वी ने जल्दी से अपने गाल पर हाथ रख लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये क्या था? अनय ने उसकी बात का जवाब दिया, अपनी वाइफ को किस कर रहा हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? तो मनस्वी अपना चेहरा दूसरे तरफ करके खड़ी हो गई, क्योंकि उसके गाल एकदम लाल हो गए थे, और उसे इस तरह शर्माते देखकर अनय ने आगे आकर पीछे से उसके कान में धीरे से सिर्फ इतना कहा, सच में पहले वाली मनस्वी तो मैं ही हो तुम, बट मुझे ये वाला वर्जन पसंद है तुम्हारा, आई लाइक माई वाइफ मिसेज मनस्वी सिंह। उसकी बात सुनकर मनस्वी बहुत ही खुश हो गई, लेकिन फिर भी उसने मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखा और अपने मन में बोली, बट आई लव माई हस्बैंड, काश मैं तुमसे ये बात बोल पाती, लेकिन मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते और मैं शायद हमेशा ऐसी नहीं रह सकती जिसे तुम पसंद करते हो, बट आई लव माई हस्बैंड। दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ा सा बेसमेंट जिसमें बहुत ही ज्यादा अंधेरा है, और वहां पर बहुत ही ऊंचाई पर जलते हुए एक बल्ब की रोशनी में कुछ साए नजर आ रहे हैं, और तभी उस खाली जगह पर कुछ जूतों की खटपटाहट की आवाज आती है, जिससे पता चलता है कोई तेज कदमों से चलता हुआ उस जगह पर आ रहा है, और उसके कुछ देर बाद एक लड़का बहुत ही तेज आवाज में चीखा, इतनी तेज आवाज में कि उसकी दर्द भरी चीख सुनकर किसी की भी दिल कांप जाए और धड़कनें बढ़ जाएं। उसकी दर्द भरी चीख सुनकर ये समझ में आया कि वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है, शायद तकलीफ से भी ज्यादा जो कुछ होता है वो महसूस कर रहा है। तभी इतनी दर्दनाक आवाज चीख बनकर उसके मुंह से निकली, लेकिन फिर भी वो तेज चीख उस जगह से बाहर नहीं जा पाई और उन दीवारों से टकराकर उस पूरी जगह पर गूंज गई। उसके बाद उसी तरह की 3-4 और चीखें सुनाई दी, लेकिन कुछ मिनट के बाद वहां एकदम सन्नाटा हो गया, और लेकिन तभी आदित्य की आवाज सुनाई दी, इसी हाथ से तूने मेरी सोना पर वार किया और इसी हाथ से तो उसे छूना चाहता था ना, अब तेरा ये हाथ ही नहीं बचेगा। इतना बोलते हुए वहाँ जमीन पर नजर आता है खून से भरा हुआ एक हाथ, और उस पर आदित्य के भारी भरकम सोल वाले जूते, जिससे उसने उसका हाथ बहुत ही कसकर दबा कर रखा है, और लगातार आह के साथ एक और तेज चीख उस लड़के के मुँह से निकली। लेकिन इस चीख के अलावा जमीन पर गिरे हुए उस शख्स ने और कुछ भी नहीं बोला, और तभी आदित्य ने साइड में खड़े एक आदमी की तरफ इशारा किया तो उसने उसके हाथ की उंगली का एक नाखून खींचकर उखाड़ दिया और सामने जमीन पर पड़ा वो लड़का दर्द से बिलबिला उठा। दर्द की वजह से उस लड़के का पूरा चेहरा एकदम लाल पड़ गया है और उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे हैं, लेकिन वहां पर मौजूद किसी को भी उस पर जरा भी तरस नहीं आ रही है, क्योंकि ये लड़का और कोई नहीं विराज है। वही विराज जिसकी वजह से सुनैना पिछले 3 दिनों से हॉस्पिटल में एकदम किसी बेजान लाश की तरह पड़ी हुई थी और आज जब उसे होश आया तो आदित्य को पता चला कि उसकी हालत तो और भी ज्यादा खराब है और इसीलिए वहां से निकलकर तुरंत उस जगह पर आया जहां अरविंद ने पिछले 3 दिनों से विराज को कैद करके रखा हुआ है, क्योंकि सुनैना की हालत देखने के बाद आदित्य को जितना गुस्सा आया वो अपना पूरा गुस्सा निकालने के लिए ही वहां पर आया था और अभी और से टॉर्चर करके टॉर्चर होते हुए देखकर कहीं ना कहीं आदित्य को कुछ सुकून भी मिल रहा है और कुल मिलाकर वो विराज को एक सबक सिखाना चाहता है जिससे कि वो फ्यूचर में कभी ऐसा कुछ करने के बारे में न सोचे। आदित्य के आधार पर पिछले 3 दिनों से अरविंद ने उसे खाना नहीं दिया था, वो उसे पानी पर ही जिंदा रखे और उसके हाथ पैर बांध कर रखे थे और चेहरे पर भी काला कपड़ा डालकर रखा हुआ था, लेकिन जब से आदित्य वहां पर आया है उसने उसकी हालत इतनी बुरी कर रखी है कि वो अब बस अपनी मौत के लिए भीख ही मांग सकता है। जीने की ख्वाहिश तो उसकी सारी खत्म हो गई होगी और जो भी गलतियां उसने की वो सब एक एक कर उसे जरूर याद आ रही होंगी, लेकिन फिलहाल वो किसी भी गलती के लिए आदित्य से माफी नहीं मांग रहा है, क्योंकि शायद उसे पता है चाहे वो जितना रोकर गिड़गिड़ाकर उसे माफी मांग ले, आदित्य उसे किसी भी कीमत पर माफ नहीं करने वाला है, इसीलिए वो कोशिश भी नहीं कर रहा। आदित्य ने उसे गुस्से में 2-4 लात मारी और फिर बाकी लोगों की तरफ देखकर बोला, इसे मरने मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए इसे जिंदा रखना और बाकी कुछ भी कर सकते हो तुम सब इसके साथ। आदित्य की बात सुनकर उन सभी लोगों ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर आदित्य जिस तरह वहाँ आया था उसी तरह तेज कदमों से वहाँ उस बेसमेंट से बाहर निकल गया। आदित्य वहाँ से दोबारा हॉस्पिटल वापस आ गया। इस बीच उसने ऑफिस का काम बिल्कुल भी नहीं देखा है और एक तरह से सारा काम उसने रवि और शिवानी पर ही छोड़ रखा है। बीच बीच में जरूरत पड़ने पर नदीम भी उन लोगों को सुपरवाइज करता है और सारी इन्फॉर्मेशन आदित्य को मेल कर देता है, लेकिन आदित्य ने अभी उनमें से एक भी मेल चेक नहीं किए हैं और वो नदीम पर काफी भरोसा भी करता है, लेकिन अभी उसके पास उसके लिए सुनैना से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है।
वो जब हॉस्पिटल आया तब सुनैना को होश आ चुका था और नैना उससे मिलने के लिए अंदर गई हुई थी, इसलिए उसे बाहर वेट करना पड़ा और जब तक वो नैना के बाहर आने का वेट कर रहा है साथ में वो इधर उधर भी देख रहा है तो उसे वहां पर साइड में एक लंबा चौड़ा सा दिखने वाला आदमी नजर आया। उसके बाल भी नॉर्मल से थोड़े लंबे थे, लेकिन उसने कैप और मास्क लगा रखा था तो आदित्य को उस पर थोड़ा सा को हुआ और वो अजीब सा चेहरा बनाते हुए उसके तरफ ही बनने लगा। आदित्य को अपनी तरफ आते देख वो आदमी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया और उसने अपना चेहरा भी दूसरी तरफ कर लिया और आदित्य उस आदमी तक पहुँच पाता उससे पहले ही नैना उन दोनों के बीच में आ गई। उसने आदित्य को साइड में ले जाकर उससे कहा, आदित्य वो अक्षत है, छिपकर यहाँ सुनैना को देखने के लिए आया है क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो ऐसे पब्लिक में सामने नहीं आ सकता मेरे साथ। नैना ने आदित्य को मोटे तौर पर पूरी बात समझाने की कोशिश करते हुए कहा। आदित्य ने नैना की पूरी बात ध्यान से सुनी लेकिन कुछ भी नहीं बोला और पूरी बात सुनकर सिर्फ हल्के से अपना सिर हिलाया। आदित्य ने एक नज़र अरविंद की तरफ देखा, वो बहुत ही आराम से अपनी जगह पर खड़ा है क्योंकि उसे इस बारे में पहले से ही पता था और सारी चीजें उसके कंट्रोल में ही हैं। आदित्य को भी ये समझ आ गया और फिर कुछ देर के बाद अक्षत ने नैना को एक इशारा किया और वहां से निकल गया। नैना और आदित्य एक साथ ही खड़े हैं, तभी आदित्य ने देखा कि स्वीटी भी सुनैना से मिलकर उसके रूम से बाहर निकल कर आ रही है और विवान भी वहां पर साइड में ही खड़ा हुआ है। आदित्य को वो देखकर स्वीटी थोड़ा सा एक्साइटेड होते हुए उसकी तरफ आई और उसके गले लगते हुए बोली, भैया अब आप कैसे हैं, ठीक तो है ना, अब आप भाभी की फिक्र मत करिए, वो बस कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी पहले की तरह, लेकिन आप अपना भी ख्याल रखिए, देखिए क्या हालत कर ली है आपने अपनी। स्वीटी की ऐसी बातें सुनकर आदित्य ने हल्के से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं ठीक हूँ स्वीटी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। उसकी इस बात पर स्वीटी ने मायूसी से उसकी तरफ देखा और अपना सिर हिलाया और फिर थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद बोली, भाई मैं घर वापस कब आ सकती हूँ, तभी विवान ने नैना को अपनी तरफ बुलाया। वो कब से वहाँ पर खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी और विवान ने उसे घर वापस चलने के लिए पूछा। स्वीटी के इस सवाल पर आदित्य ने फिर से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अभी पूरी तरह से टला नहीं है स्वीटी, और फिलहाल तुम वहाँ नैना के साथ हो क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई तुम्हारे साथ होगा, लेकिन घर पर तो एकदम अकेली रह जाओगी। स्वीटी ने उसकी बात समझते हुए कहा, अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नैना दी और अक्षत सर भी बहुत अच्छे हैं और मैं आपको परेशान भी नहीं करना चाहती। अभी आप प्लीज भाभी पर ध्यान दीजिए, वैसे वो पहले से ठीक है लेकिन आपको काफी मिस कर रही हैं, जाकर मिल लीजिए। उसके बाद पर अक्षत ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और सुनैना के रूम की दरवाजे की तरफ ही बढ़ गया। आदित्य को सुनैना के हॉस्पिटल रूम में जाते हुए देखकर उन सब ने तसल्ली से मुस्कुराया और फिर नैना ने स्वीटी को अपनी तरफ बुलाया और उससे अपने साथ घर चलने के लिए बोला। स्वीटी भी चुपचाप उन दोनों के साथ ही वहां से निकल गई क्योंकि फिलहाल उसके पास अभी और कोई ऑप्शन नहीं है। क्रमशः